ओम शांति। बाईस नंबर के रजिस्टर में तीन पीठ पर पांच तीन मराठी को क्या बदलाव। बच्चे अपन को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। बाप पूछते हैं जब भी कहां भाषण करते हो सभा में बैठते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुमने अपने को आत्मा समझा कि दे। अपन को आत्मा समझ कर यहां बैठो। आत्मा इतने जन्म में आती है अपन को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे जितने विनाश होंगे। इसको योग आदमी कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं। कौन कहते हैं? निराकार बाप मैंने बिंदु कहती हूँ। निराकार बाप कहते हैं मैंने कौन कहता है? बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल कहती है। लेकिन बिंदु कैसे कहेगा? कहने के लिए तो जरूर साकार चाहिए। इसका मतलब कि निराकार बाप साकार में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला है। और कौन से बच्चों से बात करता है? निराकारी बच्चों। माना सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं से बात नहीं करता लेकिन वो बिंदु आत्माएं भी साकार शरीर में रहते हुए भी कैसी स्टेज में रहने वाली है? निराकारी स्टेज में रहने वाली जो आत्माएं हैं उनसे बात करना है। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। किसे याद करने से? मुझे। और तुम पावन बन जाओगे और मुक्ति जीवन मुक्ति भी पाएंगे। तो सर बिंदु को याद करने की बात है या बिंदु आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति को याद करने की बात है? क्योंकि बिंदु आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति वो सुप्रीम चल नहीं पाती। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो सिर्फ कथा कथित ब्राह्मणों की यज्ञ में जो ब्रह्मा को याद करने वाले हैं उनकी गति क्या होगी? जो ब्रह्मा की गति हुई तो उनकी गति होगी। तो ऐसे ही अगर हमको मुक्ति जीवन मुक्ति पानी है तो मुझे याद करो। यानी मुझे याद करो ये कहने वाला मुक्ति जीवन मुक्ति को पाने वाला है या नहीं है? क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। तुम पावन बन जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों सबको पानी है। सबको मन जो भी मनुष्य मात्र हैं जो भी आत्माएं हैं सबको ये मुक्ति जीवन मुक्ति पानी। माना 500 करोड़ को भी मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जाना। जब तक मुक्ति नहीं मिली मुक्ति माना छुटकारा। काय से छुटकारा? जन्म जरा और मरण। जन्म होते समय जो दुख होता है गर्भ जेल में दुख होता है बुढ़ापे का जो दुख होता है मृत्यु के समय जो दुख होता है और भी जीवन में जो दुख होते हैं उन दुखों से छुटकारा। ऐसी मुक्ति स्टेज बन जाए। वो मुक्ति जब तक नहीं मिली है तब तक जीवन में रहते मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति अलग चीज और जीवन मुक्त अलग चीज। मुक्त होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि शरीर हो जीवन हो जीवन भल न हो शरीर भल न हो लेकिन आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दुखों से मुक्ति का अनुभव करे तो मुक्ति। लेकिन क्या ऐसी मुक्ति शरीर में रहते नहीं हो सकती? बाबा ने तो कहा है कि यहाँ इस संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो यहाँ भी मनसा की ऐसी स्टेज बनाई जा सकती है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी स्टेज बनाई जा सकती है कि कैसी भी विनाश की परिस्थितियां भयंकर क्यों ना आवे, उन परिस्थितियों के बीच, उन समस्याओं के बीच हम अपने को दुख महसूस न करें, दुखों की स्थिति से परे हो जाए। जो हमको मंत्र दिया है, न दुख दो और न दुख लो, दुख लेने की भी स्टेज न हो। बल कोई हमको दुख दे रहा है लेकिन हम ऐसी स्थिति में स्थित हो कि दुख ले ही नहीं, तो पहले होती है मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। ऐसे नहीं कि पहले हम जीवन मुक्ति भोग लें फिर मुक्ति मिल जाए, पहले जीवन में रहते हुए सुख भोग लें स्वर्ग मिल जाए फिर उसके बाद मुक्ति मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे किसी एक आदमी का हाथ जल रहा हो और दूसरे हाथ में उसको रसगुल्ला रख दिया जाए तो पहले क्या करेगा? जो जलता हुआ हाथ है उस दुख से पहले छुटकारा पाना चाहेगा। अगर हाथ जलता रहे और मुख में रसगुल्ला डाल दिया जाए तो उसको रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा। तो पहले मुक्ति सुखों से और फिर बाद में जीवन मुक्ति की इच्छा होती है, सुख की इच्छा होती है। तो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में सबको आना है जरूर। ऐसे नहीं कोई कहे कि हम तो सदाकाल की मुक्ति ही चाहते हैं, हम सुख ले ही क्यों जो हमें दुख भोगना पड़े। तो ये तो सुख दुख का नाटक है, सुख दुख का चक्र है। इस चक्र में से हर आत्मा को गुजरना जरूर पड़ेगा। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपन को आत्मा निश्चय करके बैठो, हम आत्मा हैं। भाइयों और बहनों, अपन को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है, ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, सब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है। नहीं तो समझ लेते हैं कि भक्ति मार्ग में कि आत्मा सदाकाल के लिए मुक्ति पा सकती है। अगर इस दुनिया से सदाकाल के लिए आत्मा मुक्त हो जाए फिर कभी वापस ही ना आए, तो आत्मा अविनाशी हुई अविनाशी हुई अविनाशी होगी। आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी पार्टधारी है, उसके पार्ट का विनाश हो नहीं सकता। आत्मा का स्वधर्म तो शांत है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण करके पार्ट बदले, एक शरीर छोड़ तो दूसरा लेती है। वो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात ये, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है क्या कि इतना याद करें कि पाप कर्म भस्म हो जाए? किसे याद करें? पाप कर्म भस्म हो जाए, विकर्म जितने भी किए हुए हैं वो सब दग्ध हो जाए, भस्म हो जाए, ऐसी स्टेज बनाने के लिए याद भी किसको करना पड़े? डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर को याद करना पड़े, वकील बनने के लिए वकील को याद करना पड़े,
टीचर के रूप में याद तो करना पड़ेगा, तो विकर्म भस्म हो जाए इसके लिए किसे याद करना पड़े? जरूर ऐसे को याद करना पड़े जिसके स्वयं के विकर्म भस्म हुए हों। मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप लग न सके। वो कौन? तो विनाश कराने का कार्य ऐसे को सौंपा गया, इसलिए संस्कृत की गीता में, भक्ति मार्ग की गीता में भी क्या बोला है कि स्वरूप निष्ठ सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप का बोझ नहीं करता। तो विकर्म विनाश करने का जो लक्ष्य लेने वाला है उसको याद भी ऐसे ही स्वरूप को करना पड़े, जिसकी ऐसी स्टेज बनी हुई हो कि पाप कर्मों का लेप लग न सके। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है, ऐसी याद की स्टेज बनाने की। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता ही उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? विद्यमान जानकारी, वेद माने जिससे जानकारी मिले ऐसा शास्त्र। वेदों को कहा जाता है भक्ति मार्ग में कि उच्छ्वास से वेद निकले, ब्रह्मा के उच्छ्वास से वेद निकले। उच्छ्वास माने जो मुख की श्वास निकलती है। अब ये तो सब जानते हैं कि जब कोई बात करता है तो मुख में से श्वास बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी बाहर निकलेगी। बोलते समय जब तक उच्छ्वास बाहर ना आए तो आवाज कैसे निकलेगी? तो परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो बोला वही कौन सी वाणी हुई? वही वास्तव में वेद वाणी हुई, उससे हमको जानकारी मिलती है। लेकिन 68 तक जो जानकारी मिली उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत कब बनता है? मंथन करने के बाद अमृत बनता है। अगर मंथन न किया जाए तो मक्खन या अमृत नहीं निकल सकता। तो क्या कहा जाए कि 68-69 तक विचार सागर मंथन देवात्माओं ने और आखिरी आत्माओं ने किया? ज्ञान सागर की जो ज्ञान वाणी है उसका मंथन किया? वेद वाणी का मंथन किया? नहीं किया। और मुरली ने भी ये बात बताई गई कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत ये तो मंथन करने के बाद बनता है। अमृत पीने वाले तो अमर होने चाहिए। जिन्होंने अमृत का पान कर लिया उनका विनाश नहीं हो सकता। माना वो संशय बुद्धि नहीं हो सकते, अमरनाथ के अमर बच्चे होने चाहिए। बीमार पड़ जाए वो दूसरी बात। तो तुम गीता का मिसाल देते हो, पूछते हैं वेदों का नाम क्यों नहीं लेते, तो क्या जवाब देंगे? हम वेदों का नाम क्यों नहीं लेते? वेदों का इतना गायन क्यों नहीं है भारतवर्ष में? वेद सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों नहीं माने जाते? गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों माना जाता? क्योंकि गीता गाई गई है परमात्मा पार्टी के द्वारा, और वो परमात्मा पार्टी गीता का ज्ञान देता ही है युद्ध के मैदान में। बाबा ने कहा, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? विद से बना वेद, माना जानकारी, जानना, ये किस धर्म का शास्त्र हुआ? ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी जाननहार कौन कहे जाए? ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही ज्ञानी कहा जाता है, वो जानकार कहे जाते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं, जानने वाले, जानता पार्टी। और सबकी है अज्ञानता पार्टी। तो वेद किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण धर्म का। कहते हैं आर्य धर्म के थे। आर्य किसको कहते हैं? अब हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म है। आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। कौन सी गीता को? जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, तुमको वास्तव में गीता भी नहीं उठानी। क्यों नहीं उठानी है? निश्चय है वास्तव में गीता इसलिए नहीं उठानी है कि हमको बाप मिल गया। जब डायरेक्ट बाप हमको श्रीमत देने वाला मिला हुआ है, तो हम मनुष्यों की लिखी हुई गीता क्यों पढ़ें, क्यों उठाएं? पहली बात है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। सब में कौन कौन आ जाता है? जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब तमो प्रधान है। ब्राह्मण मनुष्य है ये क्या है? ब्राह्मण भी तो मनुष्य है, तो वो ब्राह्मण इस समय तमो प्रधान है या सत्व प्रधान है, देवता है? तो क्या कहेंगे जब वो जिसकी कोई गारंटी नहीं है? अभी अभी सत्व प्रधान स्टेज में, अभी अभी तमो प्रधान स्टेज में, अब पता नहीं कब क्या हो जाए, तो टोटल क्या कहेंगे? तमो प्रधान ही कहेंगे। क्यों? जब ब्रह्मा का ही वो सेकंड नहीं आया है जिसमें ब्रह्मा को विष्णु बन जाए देवता, तो क्या ब्राह्मण बच्चों का वो सेकंड आ गया कि वो ब्राह्मण को देवता बन गए? तो तमो प्रधान आत्मा डिससर्विस करेगी या सर्विस करेगी? तो सब डिससर्विस ही करेंगे ना। तो अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो सत्व प्रधान बन गए। वास्तव में इस समय सर्विस करने का कार्य बाप दादा का है। बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं और कराते हैं। बच्चों को अपना अहंकार आ जाता है कि हम सर्विस बोले। तो इस समय सब है तमो प्रधान। सब में कोई रह तो नहीं गया है? एक रह गया, कौन कौन रह गया? शिव बाबा की तो बात ही अलग। जिस तन में प्रवेश किया उसको भी सत्व प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा सत्व प्रधान में आता है या तमो प्रधान में, पतित में आता है या पावन में, पतित में आता है, तो सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना। میں ماں بھی باپ کی کرنی ہے. یہ بھی تم تب کہہ سکیں گے جب تم خود باپ کو یاد کرتے ہوں گے. اس بات کی بہت بچوں میں کمزوری ہے. کیا کہہ سکیں گے؟ یہ بھی تم تب کہہ سکیں گے. کیا کہہ سکیں گے تب؟ اس دنیا میں سب پتی تم پردھان ہے. یہ بھی سمجھانے کے لیے ہمت چاہیے. لیکن کہہ کب سکیں گے؟ جب یاد کی آشر میں ہوں. اس بات کی بہت بچوں میں کمزوری ہے. بابا ہمیشہ کہتے ہیں یاد کی یاترا کا چارٹ بھیجو. کوئی کا بھی چارٹ بابا کے پاس نہیں آتا. مطلب ریگولر کوئی کا بھی نہیں آتا. وہ تھوڑا سا میں لکھتے ہیں چھوڑ دے. آنند بچوں کے لیے بابا کہتے ہیں دل سے ہر ایک پوچھے کہ ہم کہاں تک یاد کرتے ہیں. دل میں اتھا خوشی رہنی چاہیے. تم کو اندرونی خوشی ہوگی تو دوسروں کو بھی سمجھانے کا اثر ہوگا. کیا دوسروں کے اوپر اثر کب پڑے گا؟ باہر کے دکھانے کی خوشی نہیں, اندرونی خوشی چاہیے. پہلی مول بات یہی کہنا ہے کہ بھائیوں اور بہنوں اپن کو آتما سمجھو. ایسے اور کوئی ستسنگ میں نہیں کہیں گے. کیوں اور ستسنگ میں ایسے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اپن کو آتما سمجھو؟ کیونکہ وہاں ستسنگ کرانے والے خود ہی دیہ ابھیمانی ہیں. دیہ ابھیمانی منشیہ ہیں. وہ خود ہی آتما ابھیمانی نہیں ہے. یہاں تو ستسنگ کرانے والا سوئم ست باپ ہے. ایک ہے سچا ست گرو اور باقی سب کیا ہو گئے؟ جھوٹ ہے گرو تو ان کا سنگ بھی کیسا ہوگا؟ جھوٹ سنگ ہو جائے گا. واسطو میں ستسنگ تو کوئی ہے ہی نہیں. جب ساری دنیا میں سارے جھوٹے ہے ہی جھوٹ کھنڈ, تو جھوٹ کھنڈ میں ست کہاں سے آیا جو ست کا سنگ کراوے؟ تو پھر ہم کون سے سنگ میں بیٹھے ہیں؟ کیوں جب ساری دنیا جھوٹ کھنڈ ہے تو ہم ست کھنڈ میں کہاں سے آ جائیں گے؟ ست کھنڈ تو جب استھاپن ہوگا تب سچائی ہوگی. ہاں وہ سپریم سول جو باپ اس سچی پر آتے ہیں وہی سچ ہے جو آ کر کے سچ کھنڈ کی استھاپنا کرتے ہیں. سچ کا سنگ ایک ہی ہے. وہ سچ چت آنند کوئی سرو ویاپی نہیں ہے, ایک ویاپی ہے. باقی سب ہیں کسنگ. آتما کو بھوتوں کا سنگ کرنا ہوتا ہے. جب سارے میں ہی بھوت ویاپک ہیں تو اس دنیا میں سنگ کس کا ملے گا؟ بھوتوں کا ہی سنگ کرنا پڑتا ہے. یہ ہے بالکل نئی بات. کامی کرودھی لوبھی موہی اہنکاری کیا ہوئے؟ بھوت ہوئے نا. اور ساری دنیا میں سب منشی ماتر کامی کرودھی لوبھی موہی اہنکاری ہے. پرجا پتا کیسا ہوگا؟ اے ٹو زیڈ سب ہیں کامی کرودھی لوبھی موہی اہنکاری ہوئے نا, تو پرجا پتا کیسا ہوگا؟ تو پکڑے جوتا. تو ذمہ داری تو ہے لیکن وہ پٹائی کرنے لگے تب کیا کریں گے؟ اچھا اگر ریڈی رہے نا تو بالگرام بڑا آرام ہو گیا. آتما کو بھوتوں کا سنگ کرنا ہوتا ہے. یہاں ہے بالکل نئی بات. ویدوں سے تو کوئی دھرم استھاپن ہوا ہی نہیں, تو ہم ویدوں کو کیوں اٹھائیں جب اس سے کوئی دھرم ہی دھارنا ہی استھاپن نہیں ہوئی؟ کوئی میں بھی یہ نالج ہے ہی نہیں भी कहते हैं नेति नेति अर्थात हम नहीं जानते, तो नास्तिक हुए ना। कौन कहते हैं हम नहीं जानते है? जो भी मनुष्य मात्र है अथवा जो अपन को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं या बड़े बड़े पुराने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी हैं हद की दुनिया के या बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के, उनसे जब कुछ पूछा जाता है परमात्मा के बारे में तो क्या कहने लग पड़ते हैं? नेति नेति, हमें इसका अंत का पता नहीं है। तो नास्तिक हुए, आस्तिक कौन हुए? जो बाप और बाप की रचना को जाने वो हुआ आस्तिक, और जो न जाने वो हुआ नास्तिक। अब बाप स्वयं कहते हैं कि आस्तिक बनो, बाप को भी जानो और बाप की रचना को भी जानो, रचना के आदि मध्य अंत को भी जानो, अपन को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में नहीं है। वेद उपनिषद तो ढेर हैं, अब वो किस धर्म का शास्त्र है? किसने पूछा है? वो तो अपनी बातें करते हैं, तुमको तो किसी का भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं अपन को, आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। कौन से चित्रों में? त्रिमूर्ति के चित्र में और गोले के चित्र में। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने मुरली में भी कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहां आना जाना बहुत होता हो वहां लगा दो। तो कौन सा स्थान है दिल्ली का जहां आना जाना बहुत होता हो?
22 नंबर के रजिस्टर में 5389 का प्रातः क्लास, रजिस्टर का 14 नंबर पेज अर्थात दूसरा पेज की शुरुआत। बात चल रही थी त्रिमूर्ति और गोला का चित्र मुख्य है, तो त्रिमूर्ति और गोले के चित्र को बड़ा बड़ा बना करके मुख्य स्थानों पर लगाया जाए जहां आना जाना बहुत होता, तीन सीट पर हो। सूर्य में तो और धर्मों का नहीं आता, तो मुख्य ये दो चित्र हैं, समझाना ही इन पर। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। त्रिमूर्ति और गोले के चित्र में भी पहला क्या परिचय? पहला पहला परिचय देना है बाप का। क्या परिचय देंगे है? बाप का परिचय देंगे, त्रिमूर्ति में क्या परिचय देंगे? कि परमात्मा बाप है, शिव ज्योति बिंदु। यही तो परिचय देंगे। तुम आत्माएं भी हो जो ज्योति बिंदु, और परमात्मा बाप भी है ज्योति बिंदु। इससे बात पूरी हो गई? बात इसलिए पूरी नहीं हुई कि 500-600 करोड़ मनुष्य आत्मा भी बिंदु और परमात्मा बाप भी बिंदु, तो विशेषता क्या हुई? कौन सी विशेष बिंदु को याद करेंगे? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, तो पता कैसे चलेगा कि हमने कौन से बिंदु को याद किया जो हमारा बाप है? इतना ही नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सब ज्योति बिंदु, तो कौन से बिंदु को हम बाप माने? कैसे पता चले? कोई कहे कि जो सब आत्माओं में सबसे ऊपर है, जितनी भी आत्माएं हैं उन सब में श्रेष्ठ है मनुष्य आत्माएं, और मनुष्य आत्माएं जो बिंदु बिंदु हैं उन सब में श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उनके भी ऊपर जो सबसे ऊंचे है त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचा ऊपर वो बिंदु, उस बिंदु को याद करें तो बात पूरी हो जाएगी। क्यों? वो ऊपर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊपर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु उसके सामने बसना से तैरी नहीं है क्या है? है? ऊंच से ऊंच जब कहा गया तो जरूर कंपैरिजन किया किससे? अन्य आत्माओं से जो नीचे भी है उसके मुकाबले। कंपैरिजन तो समान जाति वालों में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, उसे हम ज्योति बिंदु कहते हैं। तो जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता उसको ऊंची से ऊंच या किसी गिनती में रख सकते हैं क्या? गिनती में आए तो चक्कर में भी आए। ये बात मुरली में क्यों बोली? क्योंकि सृष्टि के चक्र में 5000 वर्ष में जो आएगा जन्म मरण के चक्र में वो गिनती में भी आएगा, और वो परमात्मा शिव आत्माओं का बाप तो उस गिनती से न्यारा है, लेकिन जब वो मनुष्य शक्ति का जो सुपर है प्रजापिता उसमें प्रवेश करता है तब वर्षा देता है। इसलिए यहाँ बोला हुआ है कि पहले पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। तो बिंदु बाप से वर्षा मिलता है स्वर्ग का, या साकार में रहने वाले निराकारी बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है? वर्षा तो जरूर साकार में है, देने वाला भी साकार में होना चाहिए। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी समझ नहीं सकेगा। कौन से बात का निश्चय कराने बगैर? कि जिस बात से हमको वर्षा मिलता है उस बात के स्वरूप को याद करो। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप से वर्षा मिलता है। तो 69 में शरीर छोड़ गए, वर्षा कौन सा मिला? विनाशी या अविनाशी? विनाशी महल मारियों अटारियों म्यूजियम आदि का वर्षा मिल गया होगा, ईंटों के सुखधाम शांति धाम का वर्षा मिल गया होगा, बाकी अविनाशी वर्षा नहीं मिल सकता। जो अविनाशी वर्षा है सुख शांति का, ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाने वाला बाप है ज्ञान की पावर से, जो वर्षा हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। वो वर्षा एक बार जिसे मिल जाएगा वो 2500 वर्ष तक कायम रहेगा। एक बाप कोई नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना फालतू है। माना त्रिमूर्ति के चित्र में अगर बाप का परिचय किसी की बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरे चित्रों पर समझाने से कोई फायदा फायदा नहीं होगा। अलग को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। अलग क्यों कहा? दे क्यों नहीं कहा? अलग माना क्या? दे माना क्या? और नुक्ता माना क्या? बिंदु। तो पहले पहले अलग का परिचय देना, ये नहीं कहा बिंदु का परिचय देना। मुरली में साफ बोला है छोटे बच्चों को भी जब समझाओ तो छोटे बच्चों से भी कभी ये नहीं कहना है कि बिंदु को याद करो। क्या कहना है? कि वो बाबा को याद करो। तो अलग होता है पहला अक्षर, और भी अक्षर है, उन अक्षरों में पहला अक्षर है अलग। से ही 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है। उन जनमन के तत्व में आने वाली आत्माओं में पहली आत्मा है प्रजापिता। तो जब तक वहां तक नहीं पहुंचाया, उस परमात्मा पार्क तक नहीं पहुंचाया जो स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, तो क्या होगा? आगे कुछ भी नहीं समझेगा। बाप के परिचय बगैर कोई भी और बात न करो, इतने स्पष्ट हो जाओ। अगर वो त्रिमूर्ति के चित्र पर नहीं समझता है और एडमिट नहीं करता है और निश्चय पत्र लिख करके नहीं देता है, तो बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात न करो, बस वो त्रिमूर्ति का चित्र ही सुनाते रहो। सुने तो सुने, नहीं सुने तो बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, बाकी सबसे हद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। बाबा को बहुत ख्याल आता है, तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है। कौन कहता है? किसके ढंग से कहा? तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, ब्रह्मा की तंग से कहा। किसने कहा? ब्रह्मा की सोल ने कहा। वो क्यों कह दिया जब उसके मस्तक में ही बैठा हुआ है? उनसे ही वर्षा मिलता है, उनसे, इससे नहीं, उनसे। तुम्हारी आत्मा का बाप वह दूर कर दिया। क्यों कर दिया? जब ब्रह्मा के मस्तक में बाजू में ही बैठा हुआ है तो दूर क्यों कर दिया? जरूर भविष्य में कोई आने वाला पार्ट है, परमात्मा पार्ट, मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तुम सब आपस में वृद्ध हो, जब इस बात को भूलते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, जब इस बात को भूल जाते हैं तब तम प्रधान बन जाते हैं। क्या? भाई भाई को भूलते हैं तब तम प्रधान बन जाते हैं। अब बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। तमो प्रधान की निशानी क्या बताई? भाई भाई की वृत्ति अगर नहीं है तो तमो प्रधान। जब भाई भाई है तो बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो एक घर में रह सकते कि नहीं रह सकते? रह सकते, एक दूसरे को देख सकते, सुन सकते, लेन देन कर सकते। लेकिन अगर भाई भाई की वृत्ति नहीं है तब क्या करेंगे? है तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो भाई भाई की वृत्ति नहीं है तब तुम तम प्रधान बन जाते हो। भूल बात नहीं रहता है रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी नहीं जानते, गोया वह भी नास्तिक थी। तो पहले बाप का परिचय दे, उनको आस्तिक बनाना। किनको? उन ऋषि मुनि सन्यासियों को भी आस्तिक बनाना है, क्योंकि उनको बाप का ही परिचय नहीं। वो बाप किसको कह देते हैं? या तो बिंदु को बाप कह देते हैं, समझते हैं वो बिंदु बाप ही सब धर्मों का विनाश करेगा, एक सब धर्म की स्थापना करेगा, हमारी राजधानी स्थापन करेगा, अनेक भाषाएं दुनिया से खलास करके एक भाषा बनाएगा। कौन? बिंदु। अब ये काम बिंदु कैसे करेगा? साकार चाहिए ना, फिर कहेंगे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा क्या ब्राह्मणों की दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन हुई? एक भाषा है कहीं? नहीं। जब एक धर्म नहीं है, एक राज्य नहीं है, एक भाषा नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं है, तो कैसे कहा जाए कि बाप का वर्षा मिला। तो पहले उन ऋषियों मुनियों को बाप का परिचय दे, उनको आस्तिक बनाना है। तो इस तरह का वर्षा देने वाला वो बाप है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे जानने से, किसे जानने से, बिंदु को जानने से। अब बिंदु में जानने की क्या बात है, इसका मतलब बिंदु में भी कोई जानने की बात है ना। भल आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, लेकिन उस परमात्मा बिंदु को जानने में विशेष क्या बात है। वो बिंदु कौन सा पार्ट विशेष बजाता है, जो और आत्मा है वो विशेष पार्ट नहीं बजाती। वो जो पार्ट बजाता है, जो कार्य करता है, जो धंधा करता है, उस धंधे का रिजल्ट क्या आता है, जो और आत्मा उसे वो रिजल्ट नहीं आता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, बड़े से बड़े आत्माएं, पावरफुल आत्माएं इस शक्ति पर आई, और वो रिजल्ट जो परमात्मा से आता है वो और कोई से नहीं आए। वो कौन सा रिजल्ट है कि नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का कार्य और कोई नहीं करता। तो मुझे नहीं जाना है तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं, मुक्त समय तुम व्यस्त करते हो। क्या कहा, और पितरों का समझाते रहो, लंबा लंबा ज्ञान विस्तार में बताते रहो, उससे कोई फायदा नहीं। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, हैं? ये क्यों कहा, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर किसकी बुद्धि में बैठता क्यों नहीं, कारण क्या। जिस समय ये बात बोली गई उस समय जो मेहनत करने वाले हैं खुद ही नहीं जानते, तो औरों की बुद्धि में कैसे बैठेगा। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे समझाने में भूल है, औरों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता, क्योंकि बच्चे ही नहीं समझे हैं तो उनके समझाने में भी भूल हो जाती है, वो खुद ही भूले हुए हैं। बाबा फट से कह देते हाँ भूल है, आलस को नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। अरे तो बहुत सख्त होते जा रहे हैं, ऐसी शक्ति किस बात की, ऐसी शक्ति क्यों कर रहे हैं, है? पहले तो ऐसी शक्ति कभी नहीं की गई, कभी की गई क्या, तो क्या अब नया थप दिया गया क्या। अलग को नहीं समझाया तो फट से रवाना कर दो। फट से क्यों कहा, वो अगर कहता है कि आगे समझाओ, ये हम समझ गए, जान लिया, अब आगे समझाओ, आगे चलो आगे, तो उसको क्या जवाब दो, आगे नहीं, अगर नहीं समझे समझते हो तो बोले जाओ, बोलो। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अलग कोई नहीं समझा है तो धूल भी बुद्धि में नहीं बैठेगा, है? ये क्या बात हुई, धूल माना, धूल माना देह अभिमान। जिस देह अभिमानी की मिट्टी में अहमदाबादी में भगवान बाप आता है वो भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठेगा, भले वो आंखों के सामने बैठा हुआ हो तो भी तुम उसको पहचान उसको भी नहीं जान सकेंगे। किसको, धूल को। बाप किस में आता है, बाप देह अभिमानी की धूल में आता है या आत्मा अभिमानी में आता है, हैं? तमो प्रधान में आता है ना। तो अगर उस बाप को नहीं पहचाना जो अलफ है तो तुम्हारी बुद्धि में सब भी नहीं बैठेगा। शिव का बैठना तो बहुत दूर, भक्ति मार्ग का भूसा
बुद्धि में भरा हुआ है तो वो निकले कैसे? याद की यात्रा से ही निकलेगा। तुम भी जब तक इस अवस्था में नहीं बैठते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। सिविल तब बनेगी जब अपन को आत्मा समझेगी। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। अभी आंखें धोखा देती हैं या नहीं देती हैं? एक मुरली में बोला है 10-20-50 भूले तो रोज करते होंगे, क्रिमिनल आई बन जाती है। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। सिविल आई बन जाए तो और क्या चाहिए? सिविल आई किसकी होती है? देवताओं की। और क्रिमिनल आई मनुष्यों की। तो माया धोखा देती रहेगी, इसलिए पहले तो आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। बस झूठ पाप गुस्सा लिखो। क्या क्या लिखो? झूठ बोला वो भी लिखो, पाप लिखा वो भी लिखो, पाप किया वो भी लिखो, किसी पर गुस्सा किया लिखो। अपनी ही सत्यानाश करेंगे, बाबा झट समझ जाएंगे ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझे। योग में नहीं रहते हैं तो इतनी सर्विस नहीं होती है, जौहर नहीं भरता है। बल बाबा कहते हैं कोर्ट में कोई निकलेगा। परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरों को कैसे कहेंगे? सब अपने घर जाना चाहते। सन्यासी कहते हैं सुख काग विस्तार के समान है, वो सुख का नाम ही नहीं लेते। कौन से सन्यासी कहते हैं है? बाहर की दुनिया के सन्यासी कहते हैं सिर्फ, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं जो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विस्तार समान, हमें ऐसे स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए है? समुद्र ब्राह्मण भी कहते हैं, कभी सुना है? कैसे? मधुबन स्वर्ग आश्रम है तो उसमें चलो, वो तो इसे ये तो साबित नहीं हुआ। वो भी ठीक, उन्हें स्वर्ग तो चाहिए ना, कोई भी स्वर्ग सही। ऐसे तो नहीं कहते हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, काग विस्तार समान हमें नहीं जाना। हाँ, उनको जब पता पड़ता है कि ऐसा स्वर्ग आने वाला है जहाँ सोने के महल इस फूल में नहीं होंगे, जहाँ 36 प्रकार के भोजन पकाए के खाने को नहीं मिलेंगे,
भोग नहीं मिलेंगे,
तो उनका सारा नशा काबू हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान भरा हुआ है। जब बुद्धि में ये बैठाया जाता है वहाँ तो सब भाई बहन होंगे, पति पत्नी भी आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। अब क्योंकि अंदर देह अभिमान भरा हुआ है तो उन्हें गिलानी आती है, भाई बहन ऐसे पर सो के रहेंगे, ये क्या गंदा ज्ञान, हमें ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, ऐसे सड़क के सुख का बीज रूप में भी है तो आधार मूत में भी है। बीज रूप में जो टूट चुके हैं और जब उनको समझाया हो जाता है कि कौन सा तुम्हारा बाप आया हुआ, वो क्या धंधा कर रहा है, कैसे पतितों को पावन बनाए रहा है, तो कहते हैं ऐसे बाप का स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। तो कहने वाले कौन है? हर्ष योगी सन्यासी, वो अपनी हर्ष पर अड़े हुए हैं। सन्यासी मना घर घाट को छोड़ने वाले, बाप को छोड़ा माने बाप के घर को छोड़ा। सन्यासी कब कहे जाए? जब घर घाट छोड़े तभी तो सन्यासी कहे जाए। वो हद की दुनिया के सन्यासी होते हैं जो हद का घर घाट छोड़ते, और बेहद की दुनिया के सन्यासी बेहद बाप का जो घर परिवार है उसको छोड़ करके अलग अपना मठ पंथ बनाए के बैठ जाते। तो सन्यासी कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विस्तार समान, वो सुख का नाम ही नहीं लेते हैं, कहते हमें तो मुक्ति चाहिए, अब हमें तो छुटकारा मिल जाए इस दुनिया से। भक्ति मार्ग वालों से तुम ज्ञान मार्ग वालों की लड़ाई है। भक्ति मार्ग वाले कौन, उनकी पहचान क्या? जो अंधश्रद्धा में चलते हैं वो हैं सब भक्ति मार्ग वाले। जो सिर्फ कहते हैं परमात्मा बाप बिंदु है और बिंदु स्वर्ग स्थापन करता है, वो बिंदु बात ही करके स्थापन कराए रहा है। तो वो अंधश्रद्धा से कहते हैं या उन्होंने वास्तव में पहचान लिया कि वो बिंदु कैसे प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, कैसे प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन करता है। वो सिर्फ अंधश्रद्धा से कहते हैं या जानकर कहते हैं, अंधश्रद्धा से कहते हैं। तो भक्ति मार्ग वाले हैं ऐसे अंधश्रद्धा वाले भक्ति मार्ग वालों से तुम्हारे ज्ञान मार्ग वालों की लड़ाई है। भक्ति तो अथा कह कहता है, तुम्हारी नाली तो बहुत शांति की, इसमें कोई हुड़दंग आदि करने की दरकार नहीं है, कोई भी भीड़ भाड़ की दरकार नहीं। बोलो शांति का सागर तो बात ही है, अपन को आत्मा समझो और बात को याद करो तो शांति मिल जाएगी। शत्रु में भी शांति है, नई दुनिया में होती है शांति का रस। बहुत बच्चे हैं जो चार्ट में सच नहीं लिखते, नहीं तो नाली बिल्कुल ही सहज। ऐसे शिव के पुजारी ढेर हैं। मूल बात है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाप कहते हैं मन मना भव, परंतु ये अक्षर भी नहीं कहो, ये अक्षर कोई बाप ने नहीं बोले हैं मन मना भव, ये अक्षर किसका है? ये तो संस्कृत की गीता में मनुष्यों ने लिखा है मन मना भव। हिंदुस्तान की तो है हिंदी, तो संस्कृत दूसरी भाषा क्यों बनाई? तो आप इन सब भाषाओं को छोड़ो, माना संस्कृत आदि भाषा से भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। पहले तुम भाषण करो, अपन को आत्मा समझो। बहुत है जो अपन को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ नहीं सकते। कल्याण तो है बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या है? दुनिया में ऐसी याद कभी देखी? ये आर्टिफिशियल याद हुई या नेचुरल हुई कि बच्चे बैठ जाएं और बैठ करके बाप को याद करें कि ऐसे बाप से हमको ऐसे वर्षा मिलना है? बैठ के याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप को याद करना है, मतलब क्या हुआ? उठते बैठते याद कब आएगी? कर्म करते भी बाप की याद आए। जैसे माँ होती है, सारा घर का काम करती रहती है और बच्चा याद आता रहता है, कभी पूछती है मैं बच्चे को कैसे याद करूं, या हाथ पांव बांध करके बैठ जाती है बच्चे को याद करने के लिए, उसको आर्टिफिशियल याद कहेंगे ना। तो सहज याद कब होती है? सिर्फ बिंदु कह दिया तो है कठिन याद, और बिंदु का प्रैक्टिकल स्वरूप जान लिया, उस साकार स्वरूप को जान लिया जो स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, सुख शांति का वर्षा देने वाला है प्रैक्टिकल में, तो सहज याद हो जाएगी। क्योंकि हम साकार मनुष्य हैं, साकार का संबंध साकार से ही जुटेगा। बिंदु आत्मा का संबंध अगर हम जोड़ना चाहें तो सिर्फ जिन बिंदु बाप से जुट सकता है, सिर्फ बाप के रूप में जुटेगा। बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। और फिर हम सब आपस में भाई भाई हैं, आपस में भी आत्मा आत्मा भाई भाई के अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं बन सकता। तो बताया आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की, योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। सब दुखी है, सुख मिलता ही है पावन बनने से। क्या कहते हैं, वेयर इज द पीस, वेयर इज द प्योरिटी, वेयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब तक प्योरिटी नहीं आई है तब तक आत्मा को शांति मिल नहीं सकती। तुम आत्माभिमानी हो किसको समझाएंगे? तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनका तीर किसी को नहीं लगेगा, और ना कोई निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करेगा। भले मेले करते रहो, सम्मेलन करते रहो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते रहो, कितनी भी आवाज उठाते रहो, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? पवित्र रहने का कोई पुरुषार्थ